तो करदम जी ने भगवान के दर्शन पहले तो कभी किए नहीं थे, और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा तब ब्रह्मा जी के बताए हुए स्वरूप के अनुसार ध्यान किया तो भगवान उस समय में उनके सामने उपस्थित हुए। भगवान आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, भगवान क्रीड कुंडल को धारण किए हैं, चतुर्भुज उनका रूप है, शंख चक्र गदा धर्म शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। जो ही भगवान का ये दिव्याति दिव्य स्वरूप देखा करदम जी ने, उनके तो प्रेम के कारण नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लग गए और वे मूर्धना क्षितौ पृथ्वी के ऊपर सिर रखे। अभी तो भगवान आकाश में ही है और ये जमीन पर खड़े हैं, इन्होंने जमीन पर ही उनके चरणों में सिर रख दिया, उनको प्रणाम किया और बड़े प्रेम के साथ भाव विबल होकर करदम जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए करदम ऋषि ने निवेदन किया कि महाराज, मनुष्य का नेत्र तभी सफल होता है जब वह आपके दर्शन कर लेता है। न जाने कितने कितने जन्मों का आज एक साथ पुण्योदय हुआ कि आपके पावन दर्शन हुए, आपके चरणारविंद हैं, संसार सागर से पार होने के लिए जहाज के समान है। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य उन भोगों के पीछे पड़ा रहता है, निर्ये पिये स्यु, जो अनायास नरक में भी प्राप्त हो सकते हैं। महाराज, एक तरफ पिता की आज्ञा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो और दूसरी ओर आपका ये पावन भजन है, मैं इन दोनों में क्या करूं, मुझे भजन बहुत प्रिय लगता है। देखो थोड़ी सी तपस्या से आप मुझ पर कृपा करने के लिए कितना ये दिव्य रूप हमको दिखाए हैं, परंतु पिता की आज्ञा का भी पालन करना है, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे गृहस्थ में भी जाना पड़े तो आप मुझे बताइए कहाँ पर मुझे विवाह करना है, मैं तो लोक लोकांतर में बहुत भटका हूँ। हे प्रभु, आपको भूलने का परिणाम मैंने बहुत भोगा है, अब तो आपको प्राप्त होने वाले महापुरुषों के श्रीमुख से निकलने वाला जो आपका स्वरूप है वही मेरे लिए अमृत है और उसी के नशे में मैं रहना चाहता हूँ। आप निर्विकार हैं और सृष्टि की बनाने की इच्छा से ही आप इस सृष्टि को बनाते हैं, पालते हैं, ग्रसते हैं, आप अनंत शक्ति वाले हैं। आपने अपने अनुभव के द्वारा समस्त क्रियाओं से और माया से उपरति को प्राप्त कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए, आप इस विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार की निर्मल वाणी सुनकर के भगवान कहने लगे, देखो करदम जी, ब्रह्मा जी ने जो आपको आदेश दिया है वो मेरा भी चैत्य है, माने वो मेरे चित्त का अभिप्राय है और तुम्हारे चित्त का अभिप्राय भी मैं समझ चुका हूँ, इसलिए पिताजी की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे यहाँ ब्रह्मावर्त क्षेत्र में शासन करने वाले महाराज मनु पधारेंगे, वे अपने साथ में अपनी कन्या लेकर आएंगे, उस कन्या को जिसका के नाम देवहूति है उसे तुम स्वीकार कर लेना और वहाँ तुम्हारे 9 कन्याएं पैदा होंगी, और तो और उन्हीं के साथ मई तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो माम प्रपस्यसि, क्योंकि तुमने मुझसे ही सब कुछ बात पूछी है और तुमने अपनी तपस्या को अपने आप को मुझमें अर्पित कर दिया है, इस कारण मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। मैं अपनी अंश कला के साथ तुम्हारे क्षेत्र देवहूति में जन्म लेकर प्रणेशे तत्व संहिताम, मैं तत्व संहिता का उपदेश दूंगा जिससे संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। भगवान इस प्रकार से कहकर के सरस्वती नदी किनारे से पधार गए। भगवान उस समय में इतने प्रसन्न हुए थे करदम ऋषि के ऊपर उनकी आत्मीयता को लेकर, तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया, भगवान के नेत्रों से जलबिंदु गिरने लगे, वे ही जलबिंदु बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर महाराज मनु के आगमन की प्रतीक्षा को लेते हुए प्रतीक्षा करते हुए ये कर्दम महाराज अपने आश्रम में विराजमान रहे और इधर मनुजी है वो कर्दम ऋषि को प्राप्त करने के लिए, कर्दम ऋषि का दर्शन करने के लिए अपनी राजधानी से चल पड़ते हैं और कर्दम ऋषि अपने आश्रम में विराजमान है। भगवान कर्दम के सामने प्रकट हुए और कर्दम को उन्होंने वरदान दे दिया कि मैं अपने अंश कला के साथ आपके यहाँ अवतार लूंगा, देवहूति के यहाँ अवतार लूंगा और कपिल संगीता के नाम से लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान का विस्तार करूंगा। भगवान वहां से ऐसा वरदान देकर, दर्शन देकर पधार गए और उसके बाद कर्दम ऋषि अपने आश्रम में रहे। बड़ा पुण्य वो आश्रम है, सब प्रकार के पशु पक्षी वैर भाव से रहित होकर वहां रह रहे हैं। बड़ा नीरव स्थान है वहां। कर्दम ऋषि के आश्रम में शत्रुपा के साथ और देवहूति के साथ महाराज मनु पधारे और मनु ने देखा कि एक विशाल शरीर वाले, जटा वाले, बड़े भव्य रूप में शांत स्वभाव वाले ऋषि विराजमान हैं। वे ऋषि के चरणों में जाकर प्रणाम किए और महाराज मनु का सम्मान करते हुए कर्दम ऋषि ने कहा कि आप जैसे राजाओं का प्रजा की रक्षा के लिए विचरण करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए राजा में सूर्य की, इंद्र की, अग्नि की और वायु की मूर्तियां विराजमान रहती हैं। बताइए आप मेरे इस आश्रम में कैसे पधारे हैं, आने का कारण बताइए। सम्राट मनु ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से बनाया है, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से बनाया है। हृदयम तस्य ही ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्राह्मण ब्रह्मा का हृदय है और क्षत्रिय उनका अंग है। मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। मेरी पुत्री ने आपके दिव्य गुण सुने हैं और कोई सामान्य पुरुषों से नहीं सुना। अश्रिणोत नारदा देशा, इसने नारद जी से ये बात सुनी है कि आप में दिव्य गुण है और आप ही के साथ ये विवाह करने का प्रस्ताव रख रही है, तो इसके प्रस्ताव को हम मान करके सर्वात्मनान रूपांते, आपके लिए भी यही उपयुक्त बात होगी और हमारे कुल का भी गौरव बढ़ जाएगा, आप हमारी कन्या देवहूति को स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि अच्छी बात है, हम आपकी कन्या को स्वीकार तो करते हैं, परंतु एक बात है, हम ज्यादा दिन गृहस्थ में रहने वाले नहीं हैं। अतो भविष्य समये न साध्वीम, हमारे जब तक संतान न हो जाए तभी तक गृहस्थ के रूप में रहने का विचार है, और जब संतान हो जाएगी तो फिर हम गृहस्थ आश्रम को छोड़ भी सकते हैं। वैसे आपकी पुत्री के विषय में हमने बहुत सी बातें सुनी है, ये बहुत सुंदर है, बड़े श्रेष्ठ है, गुण में भी बहुत ऊंची है, परंतु हमारा भी अपना एक कुछ कायदा है, हमारी बात हम आपके सामने पहले ही रख देवें, इससे आपको विचार करने का अवसर भी प्राप्त हो। मनु महाराज ने कहा कि महाराज, जब आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसके बाद अब आगे हमारे सोचने का कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारी कन्या है जिसे हम दोनों माता पिता आपको सुपुर्द कर रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं। शत्रुपा ने भी बड़े प्रेम से अपनी कन्या को अपने छाती से लगाया और एक बेटी के प्रति माँ का जैसा प्रेम होता है उसके अनुसार उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशय है, इतनी उत्कंठा हुई, प्रेम हुआ कि टप टप माँ बाप के आंसू आने लग गए। बहुत सी चीज वस्तु देने के बाद फिर वे वहां से रवाना हो गए, अपनी राजधानी बर्षमती में आए। और 71 चतुर्युगी का अपना जो शासन का समय था, उस शासन के समय को उन्होंने भगवान के ध्यान में और भगवान की कथाओं को सुनने में व्यतीत कर दिया। उनका कहीं किसी प्रकार भोगों से मोह नहीं था। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। सच है कि हे सोनकादि ऋषियों, जिसको भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है उसके हृदय में कभी दुख की लहरें नहीं उठती, कभी बाहर की कोई आपत्ति आ जाए तो उनके हृदय में कभी किसी प्रकार से शोक नहीं होता। इधर माता पिता के चले जाने के बाद और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा को सुनने के बाद देवहूति महाराज कर्दम की सेवा में लग गई, और वे ऐसे विचित्र कर्दम ऋषि कि अपनी पत्नी उनको मिल गई लेकिन वे अपनी समाधि में चले गए। विसृज्य कामम दम्भंच द्वेषम लोभम अगम्बदम। ये सेवा में कुछ चीजें बाधक हैं, लेकिन देवहूति ने सारी बाधाओं को दूर किया और सेवा की। क्या है बाधा? एक कामना है, दम्भ है, द्वेष है, लोभ है, पाप है, मद है, प्रमाद है, असावधानी है। ये सेवा में बाधक तत्व हैं। इन सब बाधक तत्वों को दूर करती हुई देवहूति ने महाराज कर्दम की, जो तपस्या में समाधि में विराजमान थे, उनकी सेवा की। जब उनकी समाधि खुली तब कर्दम ऋषि के ऊपर असर पड़ा कि ओहो, देवहूति ने कैसी मेरी सेवा की है। कर्दम ने देवहूति से कहा, हे देवहूति, तुमने जो हमारी ऐसी विलक्षण सेवा की है उससे हम बहुत संतुष्ट हुए हैं। संसार में लोग सेवा के लिए अपनी वस्तु दूसरों की सेवा में लगा देंगे, परंतु अपनी सेवा को सेवा में समर्पित कर देना, अपने शरीर को सेवा में समर्पित कर देना, ये बहुत कठिन काम है। हे देवी, मैं तो तपस्या में लीन था, तपस्या में बैठा हुआ था, समाधि में था, और तुमने अपने शरीर से मेरी सेवा करके अपने सुख की, दुख की, सर्दी की, गर्मी की कोई परवाह नहीं की है। तो मैंने इस समाधि से जो जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन सिद्धियों के आधार पर मैं आपको आज बोलता हूं कि आपके मन की जो इच्छा हो आप बताओ, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। देवहूति ने कहा कि महाराज, आपको मालूम है कि हम लोग एक गृहस्थ आश्रम में, ऐसी स्थिति में मैं और क्या चाह सकती हूं। चूंकि मैं स्त्री हूं, जैसे मुझे माता पिता का प्यार मिला है, ऐसे मैं भी संतान को प्यार देना चाहती हूं। कृपा करके, हमारे संतान नहीं है, संतान होनी चाहिए। क्या अच्छी बात है। प्रिया की बात सुनने के बाद प्रियाया प्रियम अन्विच्छन, उनका प्रिय कार्य करने के लिए कर्दम जी महाराज अपने समाधि में स्थित होकर उसी समय में एक बहुत सुंदर विमान बनाए, बहुत सुंदर एक महल बनाया। विमान का अर्थ केवल ये आजकल हम हवाई जहाज देखते हैं इतना ही नहीं है। विमान सतमंजिले और उससे ज्यादा बड़े बड़े ऊंचे मंजिल वाले मकान होते हैं, उनको भी विमान बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में इन सब का विशद वर्णन मिलता है। तो विमानम कामगम क्षतः, एक ऐसा दिव्य महल बनाया कि वो इच्छानुसार कहीं जा भी सकता था। तरह तरह के उसमें रत्न जड़ित थे, तरह तरह की उसमें चित्रकारियां थी, और उस विमान में प्रवेश करने के लिए, महल में प्रवेश करने के लिए महाराज कर्दम ने देवहूति से कहा। तब उस विमान के अंदर एक बहुत सुंदर स्थान था, बैठने का स्थान, सोने का स्थान, सब प्रकार के उसमें आराम की सुविधाएं थी। वो देखा, जो जब वो देवहूति उस विमान में प्रवेश कर रही थी तो कर्दम जी ने कहा कि देखो, आप एक बार इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लीजिए, उसके बाद विमान में आप पधारिए। तो जो ही वो सरस्वती नदी के अंदर जो बिंदु सरोवर था उसमें डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाई तो बहुत गहरी चली गई। सा अंत सरसी वेशमस्था शतानी दस कन्यका, उन्होंने 1000 कन्याओं को देखा। उन कन्याओं को जो कि बहुत सुंदर अंग वाली, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी हुई, बड़ी श्रद्धा से वे चारों तरफ देवहूति की सेवा में खड़ी हो गई। देवहूति को नहलाए, देवहूति को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, परंतु देवहूति ने देखा कि भाई ये क्या है, मैं कहाँ आ गई पति को छोड़ करके। जो ही पति का स्मरण किया वे उसके बाहर आ गई। तत्र चास्ते सहस्त्री भीर यत्रास्ते सह प्रजापति, उन सारी कन्याओं के साथ वे प्रजापति करदम के पास में अपने को पाई। तब अपने पतिदेव की इस प्रकार की योग समाधि को जान करके उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ और फिर पतिदेव की आज्ञा से तदा आरोहयद अमित्रहन फिर वे उस विमान के अंदर आरूढ़ हो गई। उस विमान में आरूढ़ होने के बाद जो ही संकल्प किया करदम ऋषि ने, त्यों ही वो विमान जमीन से ऊपर उठा। तस्मिन् नलुप्त महिमा प्रियानुरक्तु विद्याधरी भी रूपचीर्ण वपुर विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान अपीच्यस्ताराभिरावृत इवो नभस्थ। जिस प्रकार से ताराओं के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है, उस प्रकार से आज उस विमान की आकाश में शोभा हो रही है। विद्याधरियों ने चारों तरफ से उस विमान को घेरा है। जगह जगह करदम ऋषि उस विमान में बैठे हुए जाते हैं। आठों लोकपालों की नगरियों में पुरियों में जाते हैं और दूसरे पर्वतों की घाटियों में, सुमेरु पर्वत की घाटियों में वे जाते हैं। जगह जगह नंदन वन है, वैश्रम्भक वन है, सुर सदन है, इनमें वे जाते हैं। और इस प्रकार से घूमते घूमते उनके 100 बरस व्यतीत हो जाते हैं। भूल गई कर देवहूति कि हम कोई विमान में बैठे हुए हैं और हमारी कोई आयु भी बीत रही है, तो इस आयु को वो भूल गई। 100 वर्ष की आयु बीत गई, तब उनके 9 कन्याएं एक साथ पैदा हुई। और जब एक साथ पैदा हुई तो देवहूति के सामने प्रकट होकर के करदम ऋषि ने कहा, करदम ऋषि तो साथ में थे, उन्होंने कहा कि देखो अब हमारे संतान हो गई, अब तुम तुम्हारे और हम हमारे भजन में लगे रहेंगे। देवहूति ने कहा, देखिए आपके कन्याएं हुई है, इसलिए आपको पहले कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए। अब ये बात तो कह चुकी, लेकिन मन ही मन में विचार कर रही है कि इस संसार में किसी के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम इंद्रियों के पदार्थों के साथ तो आसक्ति करनी नहीं चाहिए। इंद्रियार्थ प्रसंगे न परित्यक्त परात्मन, जो इंद्रियों के साथ आसक्ति करता है उसको परमात्मा की विस्मृति होती ही होती है। देखो मैंने विषयों में आसक्ति की, कहां कहां मैं इस विमान में बैठ करके घूमी, मैं अपने आप को ही नहीं जान सकी, और अब मेरे पति मेरा त्याग करके जाना चाह रहे हैं, मेरी क्या दशा होगी। हाँ, जो परमात्मा को भूलते हैं उनकी यही दशा होती है। इसलिए मैं तो सारे संसार को ये चेतावनी पूर्वक कहना चाहती हूँ कि संसार में बंधन का कारण केवल ये आसक्ति है। यदि आसक्ति के बिना न रहा जाए तो हे संसारियों, संत महात्माओं के वचनों में आसक्ति करनी चाहिए और कोई आसक्ति का विषय नहीं होना चाहिए। यदि यही आसक्ति संत महात्माओं के वचनों में हो तो निसंगत्वाय कल्पते, उसके मन में अनासक्ति अवश्य पैदा होगी। यहाँ कोई भी कर्म हमने धर्म के लिए नहीं किया, वैराग्य के लिए नहीं किया, तीर्थ के अंदर जाने में हमने संकोच किया, कथा में हम नहीं गए, ऐसा व्यक्ति श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं भगवान से वंचित हो गई, क्या करूं। यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्, भगवान को प्राप्त होने का ये बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई, भगवान को प्राप्त नहीं हुई। देखो 100 वर्ष का समय मैंने केवल इस विमान में बैठ करके अफरा तफरी में निकाल दिए। बड़ा देवहूति को पश्चाताप हुआ। दयालु करदम ऋषि ने देवहूति को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवहूति, आपको किसी प्रकार से खिन्नता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। मेरी और भगवान की बात हुई है, भगवान स्वयं आपके गर्भ में अवतार लेंगे और उनके द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा, आप सब प्रकार से चिंता छोड़ दीजिए। पति की बात सुनी और वो भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत दिनों के बाद भगवान मधुसूदन करदम ऋषि के मन में आए और उसके बाद देवहूति के उदर के अंदर प्रवेश किए। देवहूति के उदर में प्रवेश करने के बाद भगवान जैसे लकड़ी में से आग प्रकट होती है, ऐसे देवहूति के कलेवर से प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो ही भगवान देवहूति से प्रकट हुए, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की। स्वयंभू ब्रह्मा वहां आए और अपने साथ में मरीचि आदि ऋषियों को लेकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया तो ब्रह्मा ने कहा, देखो बेटा, कभी कभी बेटा है वो बाप के गौरव को बढ़ा देते हैं। तुम्हारे जैसे बेटा हमारे गौरव को बढ़ा दिए तो तुम्हारे यहां बेटे वे भगवान तुम्हारे गौरव को बढ़ा दिए। त्वया में अपचिति स्तात कल्पिता निर्व्यलीकत है, तुमने बिना किसी कपट भाव से मेरी आज्ञा का पालन किया तो सचमुच पुत्र का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारे यहां साक्षात पुराण पुरुषोत्तम अवतार लिए हैं, तुम अपनी कन्याओं का यथोचित विवाह करके अच्छे अच्छे श्रेष्ठ ऋषियों के हाथ में अपनी कन्याओं को देने दे दो। और ये निश्चित मानो कि जो कैटभासुर का मर्दन करने वाले हैं वही भगवान तुम्हारे गर्भ में आए, तुम्हारे यहाँ आए हैं और यही अविद्या का नाश करने वाले हैं। और हे देवहूति, तुम्हारे भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, तुमने तुम्हारे द्वारा जो इस संसार का भला होगा ऐसा भला और कैसे और किस उपाय से हो सकता है। ये बड़े बड़े सांख्याचार्यों के आचार्य होंगे तुम्हारे पुत्र है, इनका नाम कपिल होगा और ये सारे संसार को शांति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके संपूर्ण ऋषियों के साथ वहां से चले गए। अब कर्दम ऋषि ने जैसा जैसा ब्रह्मा जी ने बताया, मरीचि को तो कला दे दी, दत्तात्रेय को अनुसूया दे दी, अंगिरा को श्रद्धा दे दी, पुलस्त्य को हविर्भू कन्या दे दी और पुलह को गति दे दी। इस प्रकार से अपनी अपनी कन्याओं को देने के बाद अब एकांत में कर्दम ऋषि भगवान कपिल के पास गए और कपिल के पास जाकर के बड़े प्रेम से उन्हें कहने लगे कि महाराज, हम तो हमारे कर्मों से नरकों के अंदर पड़े हुए थे, न जाने क्या आपने कृपा की है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। जब हम आपकी महिमा की ओर देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं सर्वप्रथम आप उसके कर्मों के प्रति आंख बंद करते हैं और आप अपनी केवल दयालुताई की तरफ विचार करते हैं। तभी तो हेलनम नगणई न, हमारे पापों को आपने देखा नहीं और हमारे देशों के यहाँ आपने जन्म लिया है। महाराज, आपका ये दिव्य रूप मेरे घर में आने लायक नहीं था, लेकिन भक्तानाम मान वर्धन है, आप दूसरों का मान बढ़ाने वाले, भक्तों का मान बढ़ाने वाले जो ठहरे। बड़े बड़े सूर्य पुरुषों ने आपके चरणों की सदा वंदना की है। ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, पराक्रम और लक्ष्मी, इनसे आपकी शोभा नित्य निरंतर बढ़ी है। आप ही पुराण पुरुषोत्तम है, आप ही प्रधान है, आप ही ज्ञान शक्ति वाले हैं, आप ही संपूर्ण लोकपालों की रक्षा करने वाले हैं। आपने अपने अनुभव रूप ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्रपंच को अपने में लीन कर रखा है। स्वच्छंद शक्ति वाले हे कपिल, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं सारे गृहस्थ का त्याग कर संन्यास में जा रहा हूँ। त्वाम हृदि युंजन विशोक है, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई शोक चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपने हृदय में बैठा लिया है, अब मैं संन्यास में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे कर्दम जी, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके यथा जनि मया तुभ्यम यद अवोचम ऋतम मुने। तुमने बहुत सही बात कही है, वस्तुतः यही बात कहने के लिए मैं यहाँ अवतार लिया हूँ। इस सृष्टि के जिन जिन तत्वों के कारण से ये हम ये रूप देख रहे हैं, इनका समझना बहुत जरूरी है। ये मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है और इस मानव शरीर को आपने प्राप्त कर लिया। ये मरने वाला तो है ही, लेकिन मरने वाले इस मानव शरीर में आकर अब ऐसे मरो कि सदा के लिए अमृतत्वाय, अमृत तत्व को प्राप्त कर लो, अमर हो जाओ। तुम मुझे अपने हृदय में ही देखो, जो तुम्हारे हृदय में ज्ञान होता है वह ज्ञान किसी और के द्वारा नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। और जो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता होती है, एक आह्लाद पैदा होता है, वो प्रसन्नता भी और कुछ नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। और मुझे जब प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य सर्वथा निर्भय और अभय हो जाता है। अब आप तो चले जाइए, मैं देवहूति को एक बहुत विलक्षण ज्ञान दूंगा जिससे देवहूति का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कपिल भगवान की वाणी सुनकर दक्षिणीकृत्यतम प्रीतः उनकी प्रदक्षिणा करके कर्दम जी वन में चले गए। वन में गए, भगवान कपिल का बहुत छोटा सा उपदेश था कि मुझे अपने हृदय में रखना, बस उससे इतना उनको लाभ हुआ कि आत्मिक शरण है, वे एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की शरण हो गए। उनकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं रही, कार्य कारणात्मक जगत से उनका मन एकदम विरत हो गया। गुणावभासे विगुण है और गुणों के रूप में प्रतीत होने वाले इस जगत से वे एकदम ऊपर उठकर निर्गुण स्वरूप में स्थित हो गए। सर्वत्र भगवान वासुदेव को देखने लगे, उनमें उनकी भक्ति हो गई। राग द्वेष से रहित होकर वे भगवत भक्ति से संपन्न होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, देखिए कपिल भगवान का उपदेश आप छोड़ मत देना। कपिल भगवान से देवहूति ने कैसा प्रश्न किया और क्या उनको उत्तर दिया है, इसको आप हमको विस्तार के साथ सुनाओ। सूत जी महाराज कहने लगे, देखो जब ये कपिल भगवान के आख्यान की बात आई तो मैत्रेय जी महाराज स्वयं बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब मैं आगे की बात आपको सुनाता हूँ। पिता के चले जाने के बाद अपनी माता का प्रिय कार्य करने की इच्छा से वे बिंदु सरोवर में ही अपने माता के पास भगवान कपिल विराजमान थे। एक बार की बात है, अपने पुत्र को बहुत प्रसन्न जान करके, अपने विधाता के वचनों को स्मरण करके देवहूति बेटे के पास आई और आकर के कहने लगी कि हे कपिल, असद इंद्रियों की तृप्ति के अंदर मेरा सारा का सारा जीवन व्यतीत हो गया। ऐसा लग रहा है मैं बहुत अंधकार में डूब रही हूँ। ऐसे अंधकार में डूबने वालों के लिए तुम साक्षात ज्ञान के सूर्य हो, तो मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि संसार रूपी वृक्ष ऐसा मेरे हृदय के अंदर बद्ध मूल हो गया, उसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि इस वृक्ष को मैं कैसे काटूं, इसकी जड़ें कैसे मेरे मन से निकल जाए। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम प्रकृति और पुरुष से परे हो, अब एकमात्र तुम ही आधार हो, जो तुम कहोगे वो करूंगी बेटा, लेकिन मेरे मन से संसार रूपी वृक्ष सदा के लिए कट जाना चाहिए। माता की ऐसी बात सुनकर के भगवान थोड़े मुस्कुराए। शतांगतिर बभास ईसित स्मित शोभित आनन है, भगवान को यही चाहिए था कि कोई आकर मुझे कहे कि मैं संसार से उबरना चाहता हूँ, संसार से पार होना चाहता हूँ, मैं संसार से ऊब गया हूँ, अब मुझे आप अपनी शरण में ले लो। ये जब भगवान से कोई भी जीव कहता है तो कितनी खुशी होती है भगवान को, वो तो भगवान ही जानते हैं। परंतु जब कभी भी इतिहास में हम ये बात देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे पता चलता है कि भगवान को ये वाक्य बहुत पसंद है। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि देखो माताजी, मैं आपको ऐसी योग की बात बताऊंगा कि जिससे बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। आपका ही नहीं, ऋषिणाम श्रोतु कामानाम, जो जो ऋषि मुनि इन बातों को सुनेंगे उनका भी बहुत आसानी से कल्याण हो जाएगा। देखो माताजी, मनुष्य को अपने मन को टटोलते रहना चाहिए। मन के अंदर दो प्रकार की वृत्ति है, एक वृत्ति से तो संसार प्रिय लगता है और दूसरी वृत्ति से भगवान प्रिय लगते हैं। जब मन से संसार प्रिय लगता है तब समझना चाहिए कि अभी हमारा बंधन है, और जब उसको भगवान प्रिय लगने लगे तब समझना चाहिए अब हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। अपने मुक्ति के लिए और अपने बंधन के लिए दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है माँ, हमारा मन अपने आप कह देता है। जब इस मन में अहंकार होता है, अभिमान होता है, कामना पैदा होती है, लोभ पैदा होता है, तो देखो माँ यही मल है, यही दोष है, ये गंदगी है मन की। और तभी तरह तरह से कभी सुख कभी दुख, कभी राग कभी द्वेष कभी ईर्ष्या ये पैदा होते हैं। और जब इसी मन से हम भगवान का चिंतन करते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है, निर्भयता रहती है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। और जैसे कभी हम चल रहे गाड़ी खराब हो गई, हमसे गाड़ी नहीं सुधरती तो हम किसी कारखाने में ले जाकर गाड़ी छोड़ देते हैं कि भाई कारखाना वाला ठीक करेगा, ऐसे ही यदि हम अपने उपाय से किसी प्रकार से मन को शुद्ध नहीं कर सके तो संत महात्माओं के कारखाने में ले जाकर के अपने मन को रख देना चाहिए। क्यों कि संत महात्मा है प्रसंगम अधरम पास, संत महात्मा है बड़े तितिक्षु है, कारुणिक है, दयालु है, सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उनके मुख से निकलने वाला वचन जितना जल्दी हमारे मन को शुद्ध करता है, हे माँ दूसरा और कोई ऐसा उपाय नहीं है। और उसके बाद जो व्यक्ति जो पुरुष भक्ति करते हैं उनके मन से ये सारे के सारे विकार दूर हो जाते हैं। सतम सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ते हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। एक ही बात है, संतों के वहां चले जाओ, संत महापुरुषों के वहां जाओगे तो वहां अपने हृदय को और कानों को प्रिय लगने वाली मेरी पराक्रम की कथाएं चलेंगी और उन कथाओं को तुम सुनो, मेरे पराक्रम को सुनो, मेरे तत्व को सुनो, जगत के विषय में तुम सुनो। इन सब के सुनने से स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति और मेरे प्रति रति पैदा होगी। और जब थोड़ी सी भी भक्ति पैदा हो जाएगी तो देखे हुए और भोगे हुए सुनो भोगों से, देखे हुए भोगे हुए और सुने हुए भोगों से मनुष्य का मन स्वाभाविक ही ऊपर उठ जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। और जो ही मन भोगों से ऊपर उठता है तो भोगों से स्वाभाविक अरुचि होती है। असेवयायम प्रकृतिर गुणानाम, प्रकृति के गुणों को जब ये व्यक्ति छोड़ देता है तब उसका ज्ञान है, उसके अंदर बैठा हुआ ज्ञान स्वाभाविक ही वो बढ़ने लगता है और उसके बाद वो भक्ति के रस से लबालब हृदय वाला बहुत जल्दी ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों का सत्संग करना चाहिए। देवहूति ने कहा कि माँ ने बहिम बेटा, ये भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहते किसको है और भक्ति के कितने अंग हैं, ये आप हमको समझाइए। माता की बात सुनकर के भगवान कपिल हैं सांख्यम प्रोवाच है, वे अब भक्ति का स्वरूप बताते हैं और साथ साथ में सांख्य तत्व का भी निरूपण करते हैं। कहने लगे कि देखो माँ, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जैसे देखे हुए और सुने हुए विषयों में स्वाभाविक रूप से जाती हैं, इसी प्रकार इन्हीं इंद्रियों का और मन का प्रवाह स्वाभाविक ही भगवान की ओर जावे, मेरी ओर जावे, इसका नाम भक्ति है। और ये भक्ति इतनी दामी चीज है माँ कि ये मुक्ति से भी बढ़कर है। मुगति निरादरी भगति लुभाने, संतों ने मुक्ति का आदर नहीं किया जितने वे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुए हैं। तो अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, वो सिद्धि से माने मुक्ति से भी बड़ी है। और ये थोड़ी सी भी भक्ति होती है ये सारे के सारे अज्ञान को दूर कर देती है। और जो मेरे भक्त होते हैं माँ, वो ऐसा मेरे से प्रेम करते हैं कि मैं उनको बहुत सी चीजें देना चाहूं तो वो लेना पसंद नहीं करेंगे। वह तो अकेले में क्या, सबके बीच में क्या, बैठे बैठे मेरा ही ध्यान करते हैं। जैसे कामी ही नारी प्यार जिमी, जिस प्रकार से कामी को अपनी प्रियतमा का चिंतन होता है, प्रिय वस्तु का, प्रिय का चिंतन होता है, इसी प्रकार से बैठे बैठे चलते फिरते उठते बैठते भी प्रसन्न वक्ता अरुण लोचनानी, मेरे हंसते हुए मुख को वो देखेंगे और मेरे ही वचनों को वो सुनेंगे और साकम वाचम मेरी साथ बात करेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे और मेरी लीलाओं में उनका ध्यान जाएगा। सच पूछा जाए तो वे मेरे लिए ही जीते हैं, मेरे लिए ही सारे कर्म करते हैं। इस प्रकार से उनको यदि किसी प्रकार से सिद्धि भी दे और आठों ऐश्वर्यों से संपन्न उनको और कोई स्थान भी देवे तो भी वे उसको पसंद नहीं करते। इस प्रकार से उनकी ये स्थिति होती है। उनको घर बार से मतलब नहीं, माँ बाप से मतलब नहीं, स्त्री पुत्र से मतलब नहीं, किन्हीं से भी वे प्रेम नहीं करते। औरों के साथ प्रेम तो करेंगे भी क्या, सबके साथ यथोचित बर्ताव करते हुए भी जो प्रेम है वो प्रेम मेरे से ही करते हैं। नान्यत्र यद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानां भयम् तीव्रम निवर्तते। और जब सर्वत्र अपने ही प्राण प्रियतम को जब देखने लगते हैं तब उनका भय कहाँ रहेगा, जहां देखे वहां मैं हूं। और मेरे प्रभाव को जब समझ लेते हैं तो मेरे भक्त सदा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। देखो माँ, मेरा प्रभाव सामान्य नहीं है, जिसको मेरी भक्ति चाहिए उसको ये प्रारंभ में विचार करना चाहिए कि मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य चलता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से मृत्यु चलती है। इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भक्ति को प्राप्त होकर मेरी शरण में आ जाता है, उसका इस लोक में परलोक में सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। यह तो आपने भक्ति की बात पूछी वो बताता हूँ। अब मैं सांख्य शास्त्र के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। पुरुष प्राकृतिक गुण ही, जिससे ये मनुष्य बहुत जल्दी ही प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाए। मैं लोगों के कल्याण के लिए वो ज्ञान कहना चाहता हूँ जिससे हृदय ग्रंथि भेदनम, हृदय की गांठें खुल जाए। तो देखो, इस संसार में दो चीजों के ऊपर विचार करो, एक जड़ है एक चेतन है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। ये पुरुष अनादि है, ये पुरुष चेतन है, ये निर्गुण है, प्रकृति का साक्षी है, प्रत्येक धामा सब जगह वो विराजमान है और स्वयं प्रकाश है, और विश्वम येन समन्वितम, और अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया हुआ है। अब इस पुरुष से गलती क्या हुई कि यदृच्छा से आई हुई, स्वेच्छा से ही आई हुई प्रकृति को इसने पकड़ लिया। यदृच्छयैव उपगताम अभ्यपद्यत लीलया, प्रकृति अपने रास्ते से चल रही है और ये पुरुष अपनी जगह पर है, लेकिन अपने रास्ते से चलते चलते इस प्रकृति को पकड़ लिया और प्रकृति में फंस गया। अनुमान लगाओ कि एक यात्री यात्रा कर रहा है, डिब्बे में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, यात्रा करते 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 बहुत दूर से आया और आते आते यहाँ कलकत्ते स्टेशन पर उतरा। कलकत्ते स्टेशन पर उतरा तो सब यात्री उतर गए, सब सामान अपना अपना उतार लिया, तो एक बहुत बड़ा बक्सा पड़ा था। उसने देखा कि भाई ये बक्सा यहाँ पड़ा है, कोई इसको लेने वाला आया नहीं। इतने में ही लोग पूछे, ये बक्सा किसका है, बक्सा किसका है भाई? तो उसने कहा, भाई ये बक्सा तो मेरा है। अब उसका था नहीं, उसने कह दिया मेरा है बक्सा। बक्सा है तो खोलो, इसमें क्या है। अब वो उसको खोलने लगा, खोला तो उसके अंदर मुर्दा मिला। अब देखा कि अरे, अब पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई तुम्हारा है तो ये मुर्दा कैसे। अब कहने, नहीं साहब मेरा तो नहीं, मेरा तो नहीं, मेरा नहीं था तो तुमने मेरा माना क्यों। ऐसे ही यदृच्छयैव उपगताम, ये पुरुष अपनी जगह था, प्रकृति अपनी जगह थी, लेकिन बिना मतलब ये प्रकृति को पकड़ लेता है और पकड़ करके और फिर मुंह है ये मोहित हो जाता है। मोहित होकर के प्रकृति के गुण धर्म को वह स्वयं उसमें अपने में धारण कर लेता है। और कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैर आत्मनि मन्यते, और जो प्रकृति में होने वाले कर्म है उन कर्मों को वो अपने द्वारा किया हुआ मान लेता है, माने करने पने का अभिमान पैदा होता है। और जहाँ करने पने का अभिमान हुआ माताजी, वहीं पर उसको अपना करने का फल भी भोगना पड़ता है। तो कार्य कर्ण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। जब वो कर्तृत्व की तरफ चला गया तो उसका भोक्तृत्व भी उसी की तरफ ही जाएगा, और जब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व में रहेगा तब तक प्रकृति से परे जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप इसको अपना ज्ञान नहीं होगा। देवहूति ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई पुरुषोत्तम, तुम इस प्रकृति और पुरुष का थोड़ा और विवेचन करके समझाओ। सदसच्च यदात्मकम, अरे पुरुष और प्रकृति के कारण से ही तो ये कार्य कारणात्मक जगत प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छी बात बताए हो, तुम्हारे इन वचनों से हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है, थोड़ा और इसका विशद वर्णन करके बताओ। तो भगवान कहने लगे, देखो हम आपको बतावे कि कार्य कारणात्मक जगत है, इसके महाकारण तो परमात्मा है, कारण प्रकृति है। महाकारण उसको बोलते हैं कि जो कभी किसी में लीन नहीं होता है और जिसका अपना कोई कारण नहीं होता है, वो महाकारण है। तो पुरुष तो इसका महाकारण है, प्रकृति कारण है, और कारण उसको बोलते हैं जिससे कार्य पैदा होते हैं। तो इसी प्रकृति से पंच महाभूत पैदा होते हैं, तन्मात्राएं पैदा होती हैं, चार प्रकार के अंतःकरण पैदा होते हैं, दस प्रकार की इंद्रियां पैदा होती हैं। तो पांच और पांच दस और दस बीस और चार चौबीस, ये चौबीस मिलकर के प्राधानिक मानते हैं, माने इनको प्राकृतिक मानते हैं। तो इन प्राकृतिक तत्वों से और फिर एक काल शक्ति और ये 25 चीजें हैं, इनसे ये दृश्य जगत बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी हे मनुनंदिनी निर्विशेषस्य चेष्टा यतः, वो जो भगवान है वो ही काल शक्ति से इस प्रकृति में चेष्टा करते हैं तब ये संसार बनता है। बनता यूं है मां कि भगवान की कृपा से काल शक्ति से प्रकृति में क्षोभ होता है। बताया था दही अपनी जगह पड़ा है उसमें से सीधा घी नहीं निकलता है, ऐसी प्रकृति ये पड़ी है उसमें सीधा ही संसार नहीं बना, उसमें भगवान ने काल शक्ति के द्वारा उसका क्षोभ किया। क्षुभित धर्मिण्याम, क्षोभ करने पर उसमें से एक महत्त्व निकला, बिलोना करते हैं तो छाछ निकलती है, घी निकलता है, ऐसे ही महत्त्व बना। महत्त्व क्या है? महत्त्व है एक ज्ञान शक्ति, जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर होता है। स्वतेजसा अपिव तीव्रम आत्म प्रस्वापनम तमः, अपने स्वरूप को ढक देने वाला जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने का काम महत्त्व का है। ऐसा महत्त्व ज्ञान संपन्न वस्तु बनती है। ये व्यष्टि में बुद्धि कहलाती है और समष्टि में यही महत्त्व कहलाता है। अब देखो यहां निरूपण करेंगे कपिल भगवान, तो एक एक तत्व के साथ में एक एक भगवान का स्वरूप लगा रहेगा। कहते हैं यही महत्त्व है, ये वासुदेव के नाम से कहलाता है। यदाहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन महदात्मकम, तो हमारे चित्त के अंदर जो महत्त्व है वो क्या है? वो वासुदेव है। तो ऐसे सबके साथ समझना है, महत्त्व में जब विकार होता है तब अहंकार पैदा होता है। अहंकार में ये अहंकार के संकर्षण है, ये देवता है। अहंकार का हो चाहे संकर्षण का हो, संकर्षणाख्यम पुरुषम भूत इंद्रिय मनोमयम, ये भूत इंद्रिया मन ये सब अहंकार से पैदा हुए, इनका स्वामी संकर्षण। और वैकारिक अहंकार का जब क्षोभ हुआ है तो उससे मनस्तत्व पैदा हुआ, और मन है ये अनिरुद्ध कहलाता है, और बुद्धि है ये प्रद्युम्न कहलाती है। एक ही भगवान के वंश में, एक ही भगवान के इस वासुदेव के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तो बिल्कुल भगवान के ही वंश में है, माने भगवान से ही पैदा होने वाले हैं। और एक तो लड़का है, एक पोता है। और इधर संकर्षण ये भगवान के भाई हैं, वासुदेव के भाई हैं। तो एक ही परिवार के ये चारों अंतःकरण के जो स्वामी बने, ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। है तो वही, इसी को ही आगे जाकर चतुर्व्यूह मूर्ति भी बोलते हैं। इसलिए नारद जी महाराज को सबसे पहले वहां प्रथम स्कंद में जो मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे हमारा अंतःकरण भगवान के और जाने में सहायक होता है। तो फिर इंद्रियां पैदा हुई, और इंद्रियों के पैदा होने के बाद में फिर तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र आकाश पैदा हुआ, जिससे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं। भूतानाम छिद्र दात्रित्वम, आकाश का लक्षण करते हैं कि ये प्राणियों को आने जाने का और अवकाश देने का काम करता है। आकाश के बाद फिर स्पर्श पैदा हुआ, जिससे मृदुता और कठिनता का ज्ञान होता है। और वायु से स्पर्श तन मात्रा बनी, और फिर उससे तेजस तत्व बना, जिससे सब चीज प्रकाशित होती है। द्योतनम पचनम पानम, जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उनका पाचन होता है। वस्तु सामने रहती है, यदि उसमें रूप नहीं होगा तो वो ग्रहण नहीं होगी हमारे इंद्रियों के द्वारा। रूप के बाद फिर रस बनता है, जिससे तिक्त है कि मीठा है कि खाटा है इसका ज्ञान होता है। और रूप तन मात्रा के बाद फिर गंध तन मात्रा वाली पृथ्वी का निर्माण होता है, जो कि ठोस है। भावनम ब्रह्मण स्थानम, अरे पृथ्वी नहीं बनती तो हम भगवान की मूर्ति कैसे बनाते? तो तत्त्व द्रव्यों की जो आकृति है वो पृथ्वी से बनती है। इस प्रकार से ये सब के सब तत्व बने हैं। आकाश का गुण क्या है कि शब्द है, वायु का गुण है वो स्पर्श है, और रूप का गुण है जो कि चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है वो रूप है, तेज है, तेज का गुण रूप है, और जल है वो रसना के द्वारा गृहित होता है। ये सब उसी एक परमात्मा से बनते हैं। सब चीजों को बना करके भगवान इनमें तरह तरह की शक्ति देते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इतना सब करते हुए भी भगवान इनसे परे के परे रहते हैं, और एक एक से 10 गुना ज्यादा चीज रहती है। पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है, जल से 10 गुना ज्यादा वायु आका ये अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज्यादा आकाश है, आकाश से 10 गुना ज्यादा अहंकार है, अहंकार से 10 गुना ज्यादा महतत्व है, वह उससे 10 गुना ज्यादा प्रकृति है, प्रकृति से 10 गुना ज्यादा परमात्मा है। तो क्या 10 गुना ज्यादा परिमाण में आ गया? क्या नहीं, 10 गुना ज्यादा का अर्थ है कि बहुत बड़े हैं वो। तो कर्म वृद्धि दशोत्तरई, यह तो केवल परमात्मा के लिए थोड़ा दशोत्तर बता करके उनको बहुत विस्तार के रूप में ही समझना चाहिए, केवल 10 आंगुल जितना ही नहीं समझना चाहिए। तो ऐसा वो जब ये सारा का सारा ब्रह्मांड होता है जिसमें तरह तरह के देवता हैं, बुद्धि के देवता भी हैं, हाथ के भी देवता हैं, आंख के भी देवता हैं, इन सब देवताओं में अलग से कोई शक्ति नहीं है, ये सारे के सारे देवता भगवान की शक्ति से ही काम करते हैं। जब ये ब्रह्मांड बनता है तो अग्नि भी उठाने का प्रयत्न करती है, दिशाएं भी उठाने का प्रयत्न करती हैं, नाड़ियां भी उठाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड ये अंडा उठता नहीं है, तब भगवान ही इस अंडे को उठाते हैं और ये संसार बनता है। कहने का मतलब माता यही है कि लोग संसार को तो देखते हैं लेकिन संसार के कारण की ओर नहीं देखते हैं। अरे जो कुछ संसार में दिखे, जहां कोई सुंदरता दिखे, विलक्षणता दिखे, वो सब भगवान की है, ये बात समझनी चाहिए। देखो माँ, प्रकृतिस्थो अभी पुरुषो नाज्यते प्राकृतिक गुणई, प्रकृति और पुरुष में इतनी भिन्नता है, इतनी भिन्नता है जैसे चावल में और तिल में भिन्नता होती है। चावल है वो सफेद है, तिल है वो काला है। अब काला तिल और सफेद चावल दोनों को कितना ही हम मिला दो, चावल चावल ही रहेगा, तिल तिल ही रहेगा। ऐसे प्रकृति के साथ कितना ही एक घुल मिल जाए जीव, लेकिन मिलते हुए भी वास्तविक जो इसका स्वरूप है वो कभी प्रकृति के साथ घुल मिल नहीं सकता है। जिस प्रकार से आकाश का जो सूर्य है वो जल के अंदर प्रतिबिंबित होता है, ठीक जल के अंदर दिखता है, तालाब के अंदर किसी दिशा से भी जाकर देखो वो सूर्य उसमें दिखेगा, लेकिन जब तक हमारी जल पर दृष्टि है तभी तक दिखेगा, आकाश पर दृष्टि जाते ही वो आकाश का ही सूर्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार से प्रकृति के गुणों के साथ अहमता और ममता करता है तभी तक वो इसके साथ बंधा हुआ प्रतीत होता है, तभी तक अपने आप को कर्ता मानता है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद फिर ये अपने को कर्ता धर्ता नहीं मानता। यर्थे यह विद्यमाने भी संस्कृति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा, परंतु अपने अपने स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वास्तव में प्रकृति से अलग होता हुआ भी इसको अलगाव का अनुभव नहीं होता है। जैसे स्वप्न में किसी आदमी के सामने सिंह आ गया तो जब तक वो जगेगा नहीं तब तक वो सिंह के भय से दूर नहीं होगा, इसी प्रकार से स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक अपनी नित्यता होते हुए भी वो अनित्य प्रकृति के साथ घुल मिल करके सुखी और दुखी होता ही रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए कि तीव्रेण भक्ति योगे न विरक्त्याच नयेद वशम, अपने चित्त को संसार के विषयों से जरूर हटाना चाहिए, यहीं से ही सारे काम गड़बड़ हो रहा है। चित्त को संसार के विषयों से हटाकर मेरे अंदर लगाया जाए, मई भावे न सत्य न, मेरा भाव सब जगह करे, क्योंकि सत्य रूप से मैं सब जगह हूँ, मेरी कथा सुने, असंग पुरुषों के साथ में रहे, सर्वभूत समत्वे न संपूर्ण प्राणियों के साथ संपूर्ण प्राणियों में एक सम तत्व को देखे, किसी के साथ भी निर्वैरता का भाव न रखे, और एकांत में जहां तक वो एकांत में रहे, और जो तात्विक ज्ञान है उस तात्विक ज्ञान को सुने समझे, ऐसा करने से वह वास्तविक तत्व को प्राप्त हो सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और ये संसार जो बनाया भगवान ने ये उसी आत्म तत्व को जानने के लिए बनाया है। अब देखो बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं लोग, कहते हैं भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो कपिल भगवान कहते हैं कि इसलिए बनाया है कि लोग अपने स्वरूप को जान लेवे, कि स्वरूप को जान लेवे इसके लिए संसार की क्या आवश्यकता है। तो देखो बड़ी बोलचाल की भाषा में सरलता से समझा रहे हैं कि यथा जलस्थ आभास है स्थलस्थे नाव दृश्यते। भाई हम कोई यहां बैठे हुए हैं और भीत के ऊपर एक पलका पड़ा हूं, कांच का किसी ने पलका किया तो एक गोल गोल हमको पलका दिखाई दिया। अरे भाई ये पलका काय का पड़ा है, ये पलका इस पानी में से आ रहा है तो पानी में से आ रहा है या कांच में से आ रहा है। तो भाई कांच की तरफ देखा तो कांच की तरफ देखा तो ये पलका कांच में कहां से आया कि ओह ये सूर्य का आ रहा है। तो सूर्य के पलके के ज्ञान के लिए हमको आका वो भीत के ऊपर दीवार के ऊपर जो पलका था उस पलके से हमको सूर्य का ज्ञान हुआ है। इसी प्रकार से एवं त्रिविध अहंकारो भूत इंद्रिय मनोमयी स्वाभाषे लक्षितो ने न सदाभाषे न सत्यदृक्। इसी प्रकार से उस परम तत्व का ज्ञान करने के लिए हम लोग देखते हैं भी ये संसार है ये प्रकाशित होता है, एक इसका ज्ञान होता है। ये ज्ञान कैसे होता है भाई, कि ज्ञान तो इंद्रियों से होता है। अच्छा इंद्रियों से ज्ञान होता है तो इंद्रियों से ज्ञान होता है ये निर्णय कौन करता है, कि भी इंद्रियों से ज्ञान होता है ये निर्णय मन करता है। अच्छा ये मन निर्णय करता है ये बात कौन कहता है, कि ये बात बुद्धि कहती है। अच्छा बुद्धि ने ये कैसे जाना कि मन और इंद्रियां विषय का ज्ञान करती है, तो बुद्धि को किसने जाना, कि भाई बुद्धि को हमने जाना। तो जब हमने जाना तो हम तक हम पहुंचे, कब पहुंचे, जब हम विषयों को देखे, इंद्रियों को देखे, मन को देखे, बुद्धि को देखे, अहंकार को देखे, तब हम तक आए। यदि ये चीजें नहीं होती तो हम तक कहां से आते, अज्ञान के अंदर पड़े हुए थे और हम अपने तक पहुंच नहीं सकते थे। अपने आप के स्वरूप की उपलब्धि कराने के लिए ये संसार बनाया है। निलिनेषु असति यस् तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय है। यदि ये भूत इंद्रियां सूक्ष्म मन बुद्धि आदि न होती तो निद्रया लीनेशु, जैसे आदमी नींद में लीन रहता है ऐसे ये लीन रहता और अपने स्वरूप का बोध नहीं करता। तो ये प्रकृति बनाई भगवान ने स्वरूप ज्ञान के लिए, संसार बनाया स्वरूप ज्ञान के लिए। परंतु माता ये जीव ने बड़ी भारी भूल कर ली, ज्ञान के लिए बनाया था और वो अज्ञान के द्वारा प्रकृति के अंदर धस गया, इस कारण से बेचारा फंस गया। तो नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्ट वित्त इवातुर है। जैसे किसी आदमी का धन नष्ट हो जाए तो वो आतुर आकुल व्याकुल होता है, वास्तव में उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ पर मान लेता है, ऐसे बिचारा नष्टवत मृषा, प्रकृति के परिवर्तन से स्वयं बिचारा झूठे ही दुखी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जहां तक हो सके प्रकृति की चीजों में बहुत कम इनका उपयोग करे और अपना मन इनसे ऊपर उठाए रखे। देवहूति ने कहा कि वह पुत्र पुरुष और प्रकृति के विषय में तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे मन में एक बहुत संदेह, ध्यान से सुनना, थोड़ा विषय कठिन जरूर है लेकिन कठिन विषय होते हुए भी जिस बात के लिए कपिल भगवान आए हैं और जिस बात के लिए कपिल भगवान का ये चरित्र वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी महाराज ने मरने वाले परीक्षित को सुनाया है और इसको सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 सोनकादियों के सामने रख रहे हैं, तो इसका कोई न कोई स्वारस्य जरूर है। इसलिए इस विषय को थोड़ा और सावधानी से हम लोग सुने। देवहूति जी प्रश्न कर रही है कि बेटा यदि पुरुष और प्रकृति में इतना ज्यादा आपस में घुलाव मिलाव हो जाता है तब तो बेटा इनका अलग अलग होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अन्योन्यापाश्रयत्वाच अन्य अन्य अपाश्रयत्वाच, एक का एक में ऐसा मिलना हो गया कि इनका अपाय हो नहीं सकता, इनका अलगाव हो नहीं सकता है। क्यों जी, कि भाई पुरुष है वो प्रकृति के बिना नहीं रह सकती, प्रकृति है वो पुरुष के बिना नहीं रह सकता। अच्छा बताओ बेटा, क्या गंध के बिना पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी, और तो जब पृथ्वी रहेगी वहां पर गंध नहीं रहेगी कि रहेगी, तो क्या जल के बिना रस रह सकता है, रस के बिना जल रह सकता है, नहीं रह सकता। तो ऐसे ही प्रकृति के बिना पुरुष नहीं रहेगा और पुरुष के बिना प्रकृति नहीं रहेगी। तो तुम एक बार सोच भी लोगे, विचार भी लोगे कि भाई पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में घुल मिल ही जाते हैं, तो फिर इन दोनों के अलग अलग ज्ञान का अर्थ क्या निकला, ये प्रश्न है। प्रश्न के अंदर सदा कमी रहती ही है, प्रश्न है वो सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत हो जाए तो फिर प्रश्न ही नहीं रहा। अब इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं देखो मां, जब तक मनुष्य की प्रकृति से अलग अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक माता आप कहते हो ये बात संभव है, ये बात उसके मन में उठ सकती है, इस दृष्टि से संभव है। वास्तव में ज्ञानेन तत्व दृष्टेन वैराग्येण बलीयसा, जब ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का, और स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद जब विषयों से उसके मन में वैराग्य होता है, तब क्या बात होती है कि प्रकृति पुरुषस्य है दह्यमाना त्वहर्निशम, उस पुरुष के सामने प्रकृति हरदम नष्ट हो रही है, इस बात का ठीक तरह से ज्ञान होता है। तिरो भवित्री शनकैर अग्नेर योनि निवारणी, जैसे आग के अंदर लकड़ी जल रही है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आग का और लकड़ी का संयोग है, परंतु गहराई से देखेंगे तो आग का और लकड़ी का कभी संयोग हो ही नहीं सकता है। जहां हम संयोग देख रहे हैं वहां आग उनको खा रही है। इसी प्रकार से जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो ये मानता है कि भाई ये प्रकृति हरदम नाश की ओर जा रही है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यश, उसके सामने प्रकृति का दोष देख लिया गया। प्रकृति का दोष क्या है, प्रकृति की कमी क्या है कि वो नष्ट होती है। देखने वाले का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो दृष्टा है, साक्षी है, अलग है और वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए न ईश्वरस्य अशुभम दत्ते स्वे महिमनि स्थितस्य च, अपने स्वरूप में स्थित वो जो साक्षी परमात्मा का अंश पुरुष जो कि ईश्वर है, सामर्थ्यवान है, ऐसे का ये प्रकृति फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब वो स्वयं होश में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे कोई सिंह का बच्चा था और वो गधों के अंदर बीच में चला गया, उन्होंने पाला पोसा और गधों के बीच में ही रहा। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वही समझता था कि मैं इसी टोली का हूं, तो उसी टोली के साथ रहा। तब एक दिन अकस्मात सिंह मिल गया तो जितने गधे थे वो दौड़ने लगे, तो वो भी उनके साथ साथ दौड़ने लगा। तब सिंह ने कहा, अरे अरे ठहर, ये तो दौड़ते हैं, तू कहां दौड़ता है? क्यों भाई? अरे तेरी और मेरी तो एक जाति है, इनकी और हमारी एक जाति थोड़ा ही, तू इनके साथ कैसे हो गया? देख तेरे मेरे पंजे एक जैसे, तेरी मेरी आकृति एक जैसी, तू गर्जना करके देख, तेरी मेरी गर्जना एक जैसी, तेरा और मेरा स्वरूप तो बिल्कुल एक है, तू इनके साथ कहां हो गया? तब उसे ज्ञान हुआ कि ओहो, इनके साथ तो मैं इतने दिन यूं ही रहा और इनके साथ मैं तो इनके जैसा ही मानने लग गया। इसी प्रकार से जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो माता ये जीव अज्ञान से जग जाता है, अज्ञान निद्रा से जग जाता है, और फिर जगत का जो ये भ्रमजाल है, जो इसको मोह निद्रा में सत्य की तरह से प्रतीत होता था, वैसा इसको प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद वो आत्माराम हो जाता है, और जो आत्माराम हो जाता है वो सर्वत्र जात वैराग्य है। फिर उसका कहीं पर भी मन नहीं अटकता, वो चाहे कितने ही विषय उसके सामने आ जाओ, चाहे कितने ही विषय उसके यहाँ से चले जाओ, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मद भक्त है प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादे न भूयसा, और हे माता, ऐसा जो मेरा परम भक्त होता है, ज्ञानवान होता है, वो निश्रेयसम स्व संस्थानम कैवलाख्यम मदाश्रयम, वो कैवल्य पर पद है, कल्याण पद है, मुक्ति पद है, मेरा धाम है, उसका वो बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। परंतु एक बात है माता, जब ये मेरे मार्ग में आता है तब बीच में इसको कई प्रकार की सिद्धियां अटका देती है। ध्यान देवे, सत्संग में जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो बीच में थोड़े लौकिक उत्कर्ष बढ़ता है, थोड़ा लौकिक भाव भी बढ़ता है लोगों में, और कुछ लौकिक कार्य भी सुगम होने लगते हैं। होते तो हैं वो भगवान की कृपा से, और उस समय में वो जो सुगमता दिखती है लौकिक कार्यों में, उसमें मनुष्य अटक जाता है। इसलिए सावधान करते हुए कहते हैं, यदा न योगोपचिता सुचेतु माया सुसिद्धस्य विसज्जतेंग अनन्य हेतु स्वथमे गति स्याद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास है। उस समय में योगी को ये विचार करना चाहिए, साधक को ये विचार करना चाहिए कि ये जो बीच में प्रकृति में कुछ विशेषता हमको दिख रही है, ये प्रकृति का ही क्षेत्र है, इसमें हमको कहीं आसक्त नहीं होना है, क्योंकि जहां तक प्रकृति का राज्य है वहां पर मृत्यु का भी राज्य है। इसलिए हमारे और संसार के बीच में एक मृत्यु नाच रही है, उस मृत्यु को देखते रहोगे तब तो सावधान रहोगे, और मृत्यु को नहीं देखोगे तो कहीं कहीं अटक ही जाओगे। इसलिए सब सबको जितना भी प्राकृतिक उत्कर्ष है उसको मृत्यु के अंदर जलता हुआ समझ करके वो मेरी भक्ति करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे। और अब मैं आपको अपनी भक्ति भी बता देना चाहता हूं। देखो मां, मेरी यदि भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करे कि दैवा लब्धे न संतोष है। मनुष्य को जैसा प्रारब्ध में मिलता है, जैसा परिवार मिला, जैसी स्त्री मिली, जैसे पुत्र मिले, जैसी रहने की जगह मिली, जैसा व्यापार मिला, जैसा जितना धन मिला, उसके अंदर सबसे पहले उसको संतोष करना चाहिए। ऐसा ही समझना चाहिए कि भगवान को जैसा देना था वैसा दिया है, ठीक दिया है, हमारे बहुत ठीक है। तो सबसे पहले संतोष प्राप्त वस्तु में संतोष करना चाहिए। आत्मविद चरणार्चनम, और जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उनके चरणों में जाकर अपने को रख देना चाहिए, बहुत जरूरी है। संत महात्माओं के संग करने से जो लाभ होता है वही वो लाभ और किसी उपाय से नहीं होता है। कहीं पर भी किसी साधन में चले जाओ, ये साधन तो बताया ही जाएगा। और जहां विषय भोगों की बातें होती हैं उनसे अपने को अलग करना चाहिए। प्रत्याहारश्च इंद्रियाणाम, इंद्रियों को बहुत कम विषय देने चाहिए। इससे क्या होगा कि समाधानम तथात्मनः, अपने आप का स्वयं का समाधान होगा, एक जगह टिकाव तो होगा। जितना ज्यादा कीचड़ होता है उतनी ज्यादा गंदगी फैलती है, जितने ज्यादा भोग पदार्थ होते हैं उतना ही ज्यादा मन दलदल में फंसता है। ये बिल्कुल महापुरुषों की सिद्धांत की बात है। और वैकुंठ लीला विध्यानम, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और एकांत देश में बैठना चाहिए। एकांत देश माने घर को छोड़कर के जंगल में जाकर के बैठे, ऐसा यदि सुलभ हो जाए तो ठीक है, बैठे थोड़ी देर, न भी हो तो अपने घर में भी अपने को हम एकांत बना सकते हैं। कमरा बंद कर लिया, किसी से बोले नहीं, चाले नहीं, एकांत में बैठ गए, तो एकांत में बैठ करके स्वरूप चिंतन करें अथवा भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूरक कुंभक रेचक, ही रेचक पूरक और कुंभक के द्वारा प्राणों का शोधन करना चाहिए। रेचक पूरक कुंभक माने एक नाक को, नाक के दो छिद्र है, अंगूठे के द्वारा बाएं नाक को तो बंद कर दिया और दाहिने नाक से जो श्वास लिया हुआ उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल करके, बाहर निकालने का नाम तो रेचक है, और धीरे 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 उसको ऊपर ले जाना है, ये ऊपर ले जाना, इसको बोलते हैं पूरक। और वहां जाकर के कई देर जहां तक श्वास को हम आसानी से रोक सकते हैं वो होता है कुंभक। इस प्रकार से करके फिर बाहर निकालना और फिर वापस लेना दूसरे नाक से और फिर उसको बाहर निकालना, ये ऐसा करते रहना, ऐसा करना चाहिए जिस समय में एकांत में ध्यान करते हो। इससे क्या होगा कि प्राण का और मन का गहरा संबंध है, इसलिए प्राण के शोधन से मन की शुद्धि होगी। और किसी भी प्रकार से अपने मन को चंचल न होने दे, ऐसा पहले से ही विचार कर ले वे। और विचार करने के बाद अपने मन में जितने दोष हैं उन दोषों को देख ले, ये दोष हमारे में हुआ करते हैं, इन दोषों का पहले से ही त्याग कर दे। प्राणायामैर दहेर दोषान धारणाविष्ट किलविषान, ये जो दोष है प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं, और धारणा के द्वारा शरीर के दोष होते हैं, शरीर में कमी आती है वह दूर होती है। और फिर अपने मन को बिल्कुल हल्का करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। कहां करें जी? तो कहते हैं कि स्वनासाग्रावलोकन है, अपने नासिका के अग्रभाग पर यूं भगवान का स्वरूप देख करके और उसका चिंतन करें, चाहे आंख बंद रखे चाहे आंख खोले, उसका स्थान यही बताया है। कहते हैं भगवान का ध्यान करें, उस समय देखें कि भगवान बड़ी प्रसन्नता से देख रहे हैं, उनका मुख कमल है, खिले हुए कमल के समान है, उनका नेत्र है, नेत्रों के ऊपर जो ये रोमावली है ये मछली के समान दिखाई दे रही है। भगवान का जो श्याम वर्ण वाला मुख है, इस मुख के अंदर ये नेत्र तो कमल के समान और उसके ऊपर जो भौवे हैं ये मछली के समान है। इस प्रकार से देखे, लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम, बड़ा दिव्य पीतांबर उन्होंने पहन रखा है, श्रीवत्स का वक्षस्थल के ऊपर चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, वनमाला बहुत सुंदर वनमाला है जिसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बहुमूल्य मणियां हैं उनके किरीट में और उनके अंगदों में और नूपुरों के अंदर जड़ी हुई है, उनके श्रोणी देश में माने कमर में एक बहुत सुंदर करधनी है, हृदयाम भोज विष्टरम, और भगवान कहाँ है, हमारे हृदय रूपी कमल के ऊपर विराजमान है, वहां उन्होंने बिस्तर लगा रखा है, बड़ा ही शांत दिव्य रूप है उनका। अपीच्य दर्शनम, उनका दर्शन अत्यंत ही सुंदर है। सारे के सारे संसार के प्राणी ऐसे दिव्य रूप को देख रहे हैं और सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे मन के अंदर ध्यान करें, किशोर उनकी अवस्था है। और देखो ध्यान से सुने, भगवान की एक बहुत विचित्र बात बताते हैं। देखो भगवान की गुप्त गुप्त बातें हैं जो भगवान अपने संतों को ही बताते हैं, हर किसी को नहीं बताते। परंतु संत ऐसे दयालु हैं कि वो गुप्त से गुप्त बात भी लोगों के सामने एकदम प्रकट कर देते हैं। भृत्यानुग्रह कातरम, भगवान की बड़ी विचित्र बात है क्या कि वो अपने भक्तजनों के ऊपर कृपा करने के लिए कातर हो रहे, आकुल व्याकुल हो रहे, कब मैं कृपा करूं, कब मैं कृपा करूं, कौन मेरी शरण में आवे, कब मैं उसके पाप को धोऊं। जैसे गंदे से गंदे कपड़े को धोने में धोबी को आनंद आता है, ऐसे ही पापी से पापी व्यक्ति का कल्याण करने में भगवान को बड़ा भारी सुख मिलता है। इसलिए भृत्यानुग्रह कातरम, ये भगवान की एक बड़ी कमजोरी की बात है। संतों ने पकड़ी और कह दिया कि अरे भाई, तुम तो ये सोचो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए लालायित हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें। ध्याये देवम समग्रांगम, भगवान का तो एक एक अंग ध्यान करने योग्य है। जब तक मन एक अंग से न हटे तब तक उस अंग के ऊपर ही अपने मन को रखे रखना चाहिए। शुद्ध भाव से भगवान के एक एक अंग के ऊपर ध्यान करें। कैसे ध्यान करें जी? अब देखो भागवतकार चरणों से लेकर मस्तक तक का ध्यान बताते हुए बताते हैं कि सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करें। ऐसे चरण है, चरणों के नीचे जो पगतली है उसका ध्यान करें कि कैसा सुंदर भगवान का चरण पगतली है, जिसमें वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है और कमल का चिन्ह है। उससे उनका बहुत कोमल कोमल वो चरण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ओह, इन्हीं चरणों से गंगा जी निकली है और इन्हीं चरणों के ऊपर छोटे 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 भगवान की अंगुलियां हैं। उत्तुंग रक्त विलसद नख चक्र बाल ज्योत्ना विराहत महत हृदयांधकारम, इतने सुंदर चरण, चरणों के ऊपर अंगुलियां और अंगुलियों के ऊपर जो छोटे 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 नख है, उन नख के नीचे जो भगवान का जो दिव्याति दिव्य रक्त है लाल लाल, उस लाल रक्त से और अंगुलियों की श्यामता से और नाखूनों की श्वेतता से एक ऐसी दिव्य कांति निकल रही है कि जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप अज्ञान अंधकार एकदम नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करें। और देखिए यही भगवान के चरण है कि यच्छोच निश्चित सरित प्रवरोधकेन, यही चरण कमल है जो गंगा जी के दिव्य प्रवाह को प्रवाहित करने वालों में महान कारण रहे हैं। और इन्हीं के चरणों से निकला हुआ जल गंगा के रूप में शंकर भगवान की जटाओं के अंदर रहा है। आहा, इन चरणों का मैं दर्शन करने जा रहा हूं, उनको साक्षात माने। ध्यान में जो हम भगवान का स्वरूप देखें उसको साक्षात भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। ध्यान करने वाले को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कल्पित भगवान का ध्यान कर रहा हूं। ये जब तक ध्यान रहेगा तब तक उसके ध्यान में कमी रहेगी। यही समझना चाहिए कि मैं वास्तविक भगवान का ध्यान कर रहा हूं। जानु द्वयम जलद लोचनया जनन्या, फिर देखना चाहिए भगवान के दोनों जानु है माने पिंडलियां हैं। आहा, इतनी कोमल पिंडलियां हैं। लक्ष्मी जी उन पिंडलियों को जब दबाती हैं तब लक्ष्मी जी के मन में भी घबराहट होती है कि कहीं मेरी कठोर अंगुलियों से इन कोमल कोमल पिंडलियों को कोई पीड़ा न हो जाए। उर्वो निधाय कर पल्लव रोचिसा यद संलालितम हृदय विभो रभवस्य कुरियात, ये वही भगवान के चरण है, पिंडलियां हैं जो हमारे लिए हृदय में विराजमान होकर हमारे लिए संसार का अभाव कर रही हैं। भगवान के घुटनों का ध्यान करना चाहिए। आहा, ये वही घुटने हैं कि जिन घुटनों के ऊपर जिन जो घुटने गरुड़ के ऊपर बैठते हैं भगवान, तब इन घुटनों की रगड़ है, गरुड़ के अंग से उनके घुटने रगड़े जाते हैं। उरु सुपूर्ण भुजयोर अधिभोज मानव, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान के वो दोनों घुटने। और जब गरुड़ उड़ता है तो वो थोड़े 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 हिलते हैं भगवान के घुटने, आहा, पंखों के साथ में, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर भगवान के नाभि कमल का ध्यान करना चाहिए। ये नाभि कमल है, ये सारे भुवनों का केंद्र है, सारा संसार भगवान के नाभि में ही रह रहा है। भुवन कोश गुहो दरस्थम यत्रात्म योनि धिषणा खिल लोक पद्मम, इसी कारण से सब ब्रह्मा जी इन्हीं में से पैदा होकर बता रहे हैं कि भाई सारे संसार का मूल केंद्र भगवान की नाभि है, संसार भगवान के नाभि में ही रह रहा है। भुवन कोश गुहो दरस्थम, यत्रात्मयोनि धिषणाखिल लोक पद्मम, इसी कारण से सब ब्रह्मा जी इन्हीं में से पैदा होकर बता रहे हैं कि भाई सारे संसार का मूल केंद्र भगवान की नाभि है, संपूर्ण सृष्टि मात्र का। फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, भगवान का वक्षस्थल है कि वो मनोनयन निवृत्तिम, वो मन को बहुत, मन को और नेत्रों को बहुत आनंदित देने वाला है, और ये वक्षस्थल है ये भगवान के सहने की शक्ति है। उस वक्षस्थल के ऊपर कौस्तुभ मणि है, कंठ के अंदर कौस्तुभ मणि है, और उनके जो भुजाएं हैं बहुत सुंदर लग रही हैं। ये वही भुजाएं जिस समय में समुद्र मंथन किए थे तो इन भुजाओं को उन्होंने बहुत प्रेम से हिलाया था। मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णक्त बाहु बलया नदि लोक पालन, उससे उनके भुजाएं हैं ये भुजाओं के अंदर आभूषण ये झर 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 आवाज करते थे, उन आभूषणों के इन भुजाओं ने धारण किया है, इस प्रकार से ध्यान करें। फिर देखे भगवान के सुदर्शन चक्र का, शंख का ध्यान करें, कौमुद की गदा है इनका ध्यान करें। देखो ये सब चिन्मय है, जैसे भगवान चिन्मय है ऐसे भगवान के भुजाओं में रहने वाले आयुध है वो भी चिन्मय है। वनमाला का ध्यान करें और फिर भगवान के वदनारविंद का ध्यान करें, और कहते हैं वदनारविंद का तो मुखारविंद का इतना ध्यान करें, इतना ध्यान करें कि बस वहां तो अपने मन को रख ही देना चाहिए। भृत्यानुकंपित धिये है गृहीत मूर्ते संचिंतयेत भगवतो वदनारविंदम, भगवान हमारे ध्यान में आए ही इसलिए है कि वो हमारे पर विशेष कृपा करना चाहते हैं। भगवान के मुख को देखे, एक मुख कमल पर क्या है, एक दिव्य आभा पड़ रही है। ये जो मकराकृति कुंडल है वो कुंडल थोड़े थोड़े हिलते हैं, यूं हिलते हुए भगवान के यूं मुख के ऊपर थोड़ी थोड़ी झलक डाल रहे हैं, इस प्रकार से भगवान के कपोलों को देखे, और फिर कपोलों के यहाँ नीचे कानों के ऊपर छोटे छोटे केश हैं, घुंघरालू केश हैं, उनका ध्यान करें, जिनके ऊपर ये दिव्याति दिव्य मुकुट रखा हुआ है उस मुकुट का ध्यान करें। भगवान के नेत्रों का ध्यान करें और भगवान के हंसी का ध्यान करें। कहते हैं हंसी को तो बहुत देखना चाहिए, क्या होगा कि यदि हम भगवान की हंसी का ध्यान करेंगे, हम भगवान को हंसा देंगे तो भाई भगवान भी हमारे जीवन में हमको हंसा देंगे। हासम हरे रावणता अखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषणम अत्युदारम, हमारे शोक रूपी सागर को शोषने में भगवान की हंसी है ये महान कारण है, इसलिए भगवान के मुखारविंद को हंसते हुए देखना चाहिए। इस प्रकार से माताजी भगवान के अंदर अपना ध्यान लगावे, उत्कंठा रहनी चाहिए कि आह अब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और इतनी प्रसन्नता रहनी चाहिए। ऐसा करने से ये मन खाली हो जाएगा। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर भावे विषय कमाए। ये ज्यादा विषयों में रुचि हमारी होती है विषयों का ध्यान करने से। भागवत में भी आएगा और श्रीमद् भगवद गीता में तो आया ही है कि विषयों का ध्यान करने से मनुष्य का पतन होता है, और गीता में भागवत में भी ये कई जगह आएगी कि विषयों विषय हमको इतने प्रिय क्यों लगते हैं। हम देखते हैं कि विषय अच्छे इसलिए लगते हैं, अच्छे नहीं, वो हमारे ध्यान में बैठे हुए हैं। उस ध्यान में यदि भगवान विराजमान हो जाएंगे तो मुक्ताश्रयम यरि निर्विषयम विरक्तम, हमारा मन विषयों से रहित हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा। आह कितना अच्छा वो मन होता होगा जिस मन में विषय की इच्छा ही नहीं होती है। तो जब मन निर्विषय होता है तब बुद्धि में स्वाभाविक समता आती है, और उस समय में उसका मन जैसा शुद्ध होता है उसकी स्थिति का वही वे ही वर्णन कर सकते हैं। वह अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, अहंकार भी उस समय में नहीं रहता, वह एक विचित्र ध्यान में विचित्र मस्ती में रहता है। क्या बताऊं माता, वो एक ऐसी मस्ती रहती है उसका उदाहरण अब क्या बतावें।